नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 7 मई 2021 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, जंगल में आग की तरह फैल रही है भारत में कोविड-19 संक्रमणों की लहर, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की चेतावनी, टीकाकरण में तेजी लाने और बचाव उपायों को मजबूती से अपनाए जाने की पुकार, कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट अधिकारों में छूट के लिए अमेरिका से मिला समर्थन, संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को रोकने के लिए मीथेन गैस उत्सर्जन में कटौती पर देना होगा जोर, 15 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के पीड़ित, हिंसक संघर्ष है बड़ी वजह, और विश्व में 9 लाख दाइयों की कमी से प्रसव संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी असर। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने चिंता जताई है कि भारत में कोविड-19 संक्रमणों की नई लहर देश भर में जंगल की आग की तरह फैल रही है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में भी कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी से हालात गंभीर हो रहे हैं। यूएन एजेंसी के मुताबिक वायरस हर आयु वर्ग के लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिनमें बच्चे और नवजात शिशु भी हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 4,14,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान किसी एक देश में एक दिन में दर्ज सबसे अधिक मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 3,915 लोगों की मौत हुई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने आगाह किया कि नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में संक्रमणों में चिंताजनक बढ़ोतरी जारी है। इन हालात में पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। उन्होंने बताया कि दक्षिण एशियाई देशों में टीकाकरण का स्तर फिलहाल बेहद कम है, जिससे वायरस के तेज फैलाव का खतरा बढ़ गया है। भारत में मौजूदा हालात पर दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने यूएन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बात की है, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण उपजे हालात के मद्देनज़र हर संभव मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले 36 संयंत्रों की स्थापना, सचल अस्पतालों का निर्माण और 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटरों जैसी ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफ्रिन ने बताया,
व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज द नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स वी हैव इन द कंट्री।
ये जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास देश में मौजूद विशेषज्ञों का नेटवर्क है। हमारे पास 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,600 विशेषज्ञ हैं। हमने अपने कुछ ऐसे कर्मचारियों को भी इसमें काम करने के लिए बुलाया है जो स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं और टीबी या उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की जवाबी कार्रवाई में शामिल रहे हैं। यानी जितने ज्यादा हाथ एकजुट हो सकें उतना ही बेहतर। प्रयोगशालाओं के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है, क्योंकि इन चीजों की बहुत कमी है और तेज जवाबी कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासतौर पर अगर आप एक अस्थायी स्वास्थ्य सुविधा बना रहे हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता महत्वपूर्ण चीजों की कमियों को दूर करना ही रहेगी।
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफ्रिन के शब्द। वहीं देश में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने कहा कि इस संकट के दौरान सबसे अहम जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीकाकरण जारी रखना होगा।
What we've seen in India is that it's
भारत में लगभग 110 दिनों में 16 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है, जो शायद दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण अभियान होगा। तो प्रबंधन तंत्र की व्यवस्था की बात हो, वैक्सीन लगाने वाले लोगों की या उनकी रिपोर्टिंग की व्यवस्था की, इन सब की तैयारी पहले से है। चुनौती है तो संख्या की। भारत के विशाल काय आकार की, दूर दूर तक फैले कठिन इलाकों तक इसे पहुंचाने की, जो एक आसान काम नहीं है।
So it's not an easy job.
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक के शब्द। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी पर जवाबी कार्रवाई के तहत सभी देशों को एक साथ मिलकर वैक्सीन उत्पादन का दायरा व स्तर बढ़ाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।
The world still relies on India for the production of vaccines.
दुनिया अब भी ऐसे अनेक टीकों के उत्पादन के लिए भारत पर निर्भर है जो बच्चों में बीमारियों की रोकथाम करते हैं। साथ ही हमारे पास यह नया टीका भी है जो भारत में ही विकसित किया गया है। निश्चित रूप से दुनिया वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने में भारत की मदद के लिए आगे आ रही है। ये मुश्किल फैसले हैं जो सरकारों को लेने पड़ रहे हैं। इसके मायने यह भी है कि हम एक वैश्विक गांव में रहते हैं और हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम अधिक देशों में टीकों के उत्पादन का विस्तार किस तरह करें। इसीलिए जब दुनिया को इस पैमाने पर टीकों की जरूरत हो तो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के बजाय हम लॉजिस्टिक को बढ़ाने के बारे में सोचें, ताकि जिन देशों के पास टीकों का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है वे पीछे ना रह जाएं।
भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक के शब्द। वहीं भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन ने जोर देकर कहा कि टीकाकरण के साथ साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार ही इस महामारी के रोकथाम की कुंजी है।
That's an important point because we know how to deal with it. The tools are the same.
मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण यह है कि हम जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। औजार और उपाय वही हैं। लगातार परीक्षण, संपर्क खोज, सक्रिय मामलों का पता लगाना, प्रारंभिक उपचार, उचित उपचार। क्योंकि यदि आप समय पर परीक्षण करते हैं और आपको हल्का संक्रमण हुआ है तो आप मध्यम या गंभीर मामले की ओर नहीं बढ़ते हैं। आपके पास वायरस से लड़ने के सारे अस्त्र मौजूद हैं। कोविड उपयुक्त व्यवहार यानी मास्क पहनना, अपने हाथ स्वच्छ रखना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और टीकाकरण करवाना। जिस तरह से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए ये सारे उपाय बहुत कारगर हैं।
भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफ्रिन के शब्द। यूनिसेफ ने खासतौर पर बच्चों पर कोविड 19 के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। बच्चे पहले की तुलना में इस बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के अभिभावक और देखभाल करने वाले उनसे छिन रहे हैं और वे अपने स्कूलों व अहम समर्थन नेटवर्क से दूर हो रहे हैं। दक्षिण एशिया में यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारे अजय ने आगाह किया है कि क्षेत्र में स्थित देशों में कोविड 19 की घातक लहर से स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी बोझ है, जिससे उनके ढह जाने की आशंका है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारों से तत्काल कार्रवाई किए जाने और स्फूर्तिवान नेतृत्व दिखाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
संयुक्त राष्ट्र ने कोविड 19 वैक्सीन के बौद्धिक संपदा अधिकारों में छूट के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थन दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस निर्णय को अभूतपूर्व करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन उत्पादकों के लिए ज्ञान और टेक्नोलॉजी को साझा करने का अवसर है, जिससे स्थानीय स्तर पर वैक्सीन उत्पादन के विस्तार की संभावना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने अमेरिकी घोषणा को वैक्सीन के न्यायसंगत वितरण के लिए एकजुटता और समर्थन का उदाहरण बताया।
I know that this is not a politically easy thing to do. So I very much appreciate the leadership of the United States.
मैं जानता हूं कि ये राजनीतिक दृष्टि से आसान बात नहीं है, इसलिए मैं अमेरिका के नेतृत्व की सराहना करता हूं और अन्य देशों से भी इस उदाहरण का अनुसरण करने का आग्रह करता हूं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी प्रमुख ने कोविड 19 पर जवाबी कार्रवाई में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया है।
We would not have the vaccines, medicines, diagnostics and devices that save lives and improve well-being.
निजी सेक्टर के अभिनव समाधानों के बगैर हमारे पास वैक्सीन, दवाएं, निदान और जिंदगियां बचाने वाले और स्वास्थ्य कल्याण को बेहतर बनाने वाले जीवन रक्षक उपकरण नहीं होते। शुक्रवार को यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन की कोविड 19 वैक्सीन साइनोफार्म को भी आपात इस्तेमाल सूची में शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी है। सुरक्षा, कारगरता और गुणवत्ता के मानकों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृति पाने वाली ये छठी वैक्सीन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सभी देशों से वर्ष 2050 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य साकार करने का आह्वान किया है, ताकि सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की विनाशकारी बढ़ोतरी को टाला जा सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव गतिविधि द्वारा उत्पन्न मीथेन गैस का उत्सर्जन इस दशक में 45% तक कम किया जा सकता है। इससे पेरिस जलवायु समझौते की शर्तों के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद मिलेगी। दोनों रिपोर्टों के सार के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को जर्मनी के पीटर्सबर्ग में आयोजित उच्च स्तरीय जलवायु बैठक को संबोधित करते हुए भरोसा जताया कि कार्बन उत्सर्जन से उपजे पर्यावरणीय झटकों के सबसे खराब प्रभावों की रोकथाम अब भी संभव है। पीटर्सबर्ग में ये बैठक नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाली जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक यानी COP26 से 6 महीने पहले आयोजित की गई। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि उन्होंने कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से उत्साहजनक संकेत देखे हैं। उनका मंतव्य उन देशों से था जो कि कार्बन उत्सर्जन की 73% मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने इस सदी के अंत तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि वर्ष 2030 तक हमें 2010 के स्तर की तुलना में वैश्विक उत्सर्जन मात्रा में 45% की कटौती करनी होगी और वर्ष 2050 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना होगा। इस तरीके से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की आशाओं को जीवित रख सकते हैं। उधर गुरुवार को प्रकाशित वैश्विक मीथेन आकलन नामक एक रिपोर्ट में मीथेन गैस में कमी करने के फायदे गिनाए गए हैं। कोहरे, धुंध और प्रदूषण में मीथेन गैस प्रमुख तत्व होती है। रिपोर्ट कहती है कि मीथेन गैस उत्सर्जन में कमी करने से हर साल लगभग 260,000 लोगों की मौतें रोकी जा सकती हैं और लगभग 775,000 अस्थमा मरीजों के अस्पताल इलाज से भी बचा जा सकता है। साथ ही लगभग 2.5 करोड़ टन फसलों के नुकसान को भी टाला जा सकता है। ये रिपोर्ट जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने तैयार की है, जो कि सरकारों और गैर सरकारी साझीदारों का एक वैश्विक भागीदारी संगठन है और इसे संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप का भी समर्थन हासिल है। मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस समूह की एक शक्तिशाली गैस है, जो कि पूर्व औद्योगिक काल से लेकर अब तक हुई तापमान वृद्धि में 30% हिस्से के लिए जिम्मेदार है। एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है जो वातावरण में सदियों तक ठहरती है, मगर मीथेन गैस बहुत जल्दी बिखर जाती है और लगभग 1 दशक के बाद लुप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि सटीक कार्रवाई के जरिए निकट भविष्य में वैश्विक तापमान वृद्धि में तेजी से कमी लाई जा सकती है।
हिंसक संघर्ष, चरम मौसम की घटनाओं और COVID-19 से उपजे आर्थिक झटकों के कारण वर्ष 2020 में कम से कम 15 करोड़ 50 लाख लोगों को संकट के स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें प्रभावितों तक राहत पहुंचाने, व्यापक पैमाने पर मौतों को टालने और आजीविकाएं ढहने से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
खाद्य संकटों के विरुद्ध वैश्विक नेटवर्क के इस अध्ययन में जिन 55 देशों में हालात की समीक्षा की गई है, उनमें भुखमरी का ये बदहाल स्तर 5 वर्ष पहले दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 2019 की तुलना में पिछले साल अतिरिक्त 2 करोड़ लोगों को भूखे पेट रहना पड़ा। बताया गया है कि अफ्रीकी देश विषमतापूर्ण ढंग से प्रभावित हैं। हिंसक संघर्ष के कारण लगभग 10 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, जिससे उनकी जीवन व आजीविका पर जोखिम है। आर्थिक झटकों की वजह से 4 करोड़ और चरम मौसम जनित घटनाओं के कारण 1.5 करोड़ से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा से प्रभावित हैं। रिपोर्ट बताती है कि बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान और यमन सबसे अधिक प्रभावित देशों में हैं। प्रभावितों तक राहत पहुंचाने, व्यापक पैमाने पर मौतों को टालने और आजीविकाओं को ध्वस्त होने से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है। 38 देशों व क्षेत्रों में करीब 2.8 करोड़ लोगों को पोषक आहार की गंभीर कमी से जूझना पड़ रहा है और वो कुपोषण के सबसे खराब रूप का शिकार होने से बस एक ही कदम दूर हैं। अनुमान है कि वर्ष 2020 में 9.8 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, जिससे उनके जीवन पर जोखिम मंडरा रहा है। हर 3 प्रभावितों में से 2 व्यक्ति अफ्रीकी महाद्वीप पर है। विश्व के अन्य हिस्सों में भी हालात खराब हैं। यमन, अफगानिस्तान, सीरिया और हैती पिछले वर्ष सबसे खराब खाद्य संकटों का सामना करने वाले देशों में थे। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों ने तैयार किया है। पिछले 5 वर्षों में 39 देशों व क्षेत्रों ने खाद्य संकटों का सामना किया है। इन देशों व क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा के ऊंचे स्तर से प्रभावित आबादी वर्ष 2016 में 9 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 2020 में 14 करोड़ से अधिक हो गई।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझेदार संगठनों की एक नई रिपोर्ट दुनिया में व्यापक स्तर पर दाइयों की कमी को दर्शाती है। दाइयों की स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लाखों महिलाओं और नवजात शिशुओं की या तो मौत हो रही है या फिर वे अस्वस्थता के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2035 तक इन स्वास्थ्य सेवाओं में समुचित निवेश के जरिए हर वर्ष 43 लाख जिंदगियों को बचाया जा सकता है। पूरे ब्यौरे के साथ प्रतिष्ठा जैन।
बुधवार को जारी रिपोर्ट में 194 देशों में प्रसव सेवाओं से जुड़े कार्यबलों और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की समीक्षा की गई है। नई रिपोर्ट बताती है कि विश्व में फिलहाल 9 लाख दाइयों की कमी है, जो कि प्रसव सेवाओं के लिए आवश्यक वैश्विक कार्यबल का 1/3 है। कोविड-19 संकट के दौरान ये समस्याएं और गहरी हुई हैं और महिलाओं व नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य जरूरतें प्रभावित हुई हैं। दाइयों को अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैनात किए जाने के कारण प्रसव सेवाओं में भी व्यवधान आया है। दाइयों की गंभीर कमी की वजह से ऐसी मौतों की संख्या बढ़ रही है जिनकी रोकथाम की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 93% दाइयां और 89% नर्सिंग महिलाएं हैं। दाइयों की भूमिका महज शिशु जन्म तक सीमित नहीं है, वे गर्भावस्था के दौरान और उसके उपरांत भी अनेक प्रकार की यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करती हैं। इनमें परिवार नियोजन, यौन संचारित संक्रमण का पता लगाना व उपचार और वयस्कों के लिए यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं हैं। इन जीवन रक्षक सेवाओं को जारी रखने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया है। एक विश्लेषण दर्शाता है कि दाइयों के जरिए दी जाने वाली सेवाओं को वित्तीय मदद से वर्ष 2035 तक 67% मातृत्व मौतों को टाला जा सकता है। साथ ही इससे नवजात शिशुओं की 64% मौतों को टालना और हर साल कुल 43 लाख जिंदगियों को बचा पाना संभव होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रसव सेवा कार्यबल में पूर्ण रूप से संसाधनों को उपलब्ध ना कराया जाना चिंताजनक है। यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य प्रणालियों में ना तो महिलाओं व लड़कियों के लिए यौन एवं प्रजनन सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और ना ही इन जरूरतों को पूरा करने के लिए दाइयों की भूमिका को पहचाना जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र ने उन 336 कर्मचारियों को एक स्मरण समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने वर्ष 2020 में अपने दायित्व का निर्वहन करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान किया। किसी एक वर्ष में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राण निछावर करने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। यूएन महासचिव ने गुरुवार को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन सभी कर्मचारियों को सदैव याद रखने का संकल्प लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
इस स्मरण समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया गया जिसमें उन असैन्य और वर्दीधारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनकी द्वेषपूर्ण कृत्यों, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य घटनाओं में मौत हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 और उसके व्यापक प्रभावों के कारण मृतकों में वे यूएन सहकर्मी भी हैं जिनकी कोविड-19 या किसी अन्य बीमारी से मौत हुई है। यूएन प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में वर्ष 2020 जैसा कोई अन्य साल नहीं था। दुनिया को एक निर्दयी महामारी का सामना करना पड़ा है जो कि अब भी भीषण पीड़ा का सबब बनी हुई है। लाखों परिवारों ने अपने प्रियजन खोए हैं। यूएन परिवार भी इससे अलग नहीं है। महासचिव गुटेरेश ने ऐसे सभी सहकर्मियों की स्मृति में 1 मिनट का मौन धारण किया। समारोह के दौरान उनके नाम पढ़े गए। महासचिव ने कहा कि 80 से भी ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सहकर्मी संयुक्त राष्ट्र अनुभव की विविधता व समृद्धता को प्रदर्शित करते हैं। उन सहकर्मियों ने संयुक्त राष्ट्र की दूरदृष्टि व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना करियर व सर्वोच्च समर्पित कर दिया।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।